शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयुतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि
जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, समादरणीय झुंझुनवाला जी, डालमिया जी, जाजू जी, भारुका जी, खेतान जी, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान की दिव्याति दिव्य जो महाराज की दिव्य लीला है, जो सारी साधनाओं का फल है, सारी साधनाओं का परिणाम है, भगवान की राज लीला में प्रवेश मिलना, उस प्रसंग में गोपियां भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हैं, अपने हृदय के भावों को रख करके, प्रभु ये जीवन आपका है, आपके लिए है, आप ऐसे कृपा करें कि ये जीवन आपके प्रेम में हमेशा डूबा रहे और कृपा करके आप हमको स्वीकार करें, क्योंकि वर्तमान में हमको अपने मन की शांति के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आपका नाम स्मरण, आपकी लीलाओं का अनुकरण, आपकी लीलाओं का चिंतन, आपकी कथा का श्रवण, ये सारे उपाय अब शांति नहीं दे रहे हैं, ये हमारी विरह व्यथा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कृपा करके आप प्रकट हो जाएं और हमारी विरह व्यथा को दूर करें। गोपियों के हृदय के भाव हैं जो गोपी गीत है, उनके जीवन की अंतिम पुकार है जो गोपी गीत है, और साधना की चरमावस्था है जो गोपी गीत है। अनेक क्रम एक साथ यहाँ पर चल रहे हैं। गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए जो निवेदन करती हैं, वो गोपी गीत के कुछ श्लोकों का आज भी हम लोग सस्वर पाठ करेंगे और उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते जडोदीक्षता
लक्ष्मकृदृशा पतिशोतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घते त्यच्युतागता गतिविदस्तो गीतमोहिता कृतवयोषितः कष्टजेनिषि रहसि संविदम् वृक्षयोदिदम् प्रशिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षधामते व्यतिरङ्गते वृजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मना
गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, आपके जो चरण है ना, जहाँ प्रेम होता है वहां आराध्य के एक एक अंग का ध्यान होता है। वो जो हाथी बाबा जी थे एक वृंदावन में, बांके बिहारी दर्शन करने नित्य जाते थे और लौट करके बिहारी जी ने क्या श्रृंगार किया है एक एक श्रृंगार का वर्णन कर देते थे। तो जहां प्रेम होता है, गोपियों ने भगवान के हस्त कमल का वर्णन किया, श्रीमुख का वर्णन किया, हृदय का वर्णन किया, वाणी का वर्णन किया। अब गोपियां भगवान के चरणों का वर्णन करती हैं। आपके चरण कैसे हैं श्याम सुंदर, प्रणत कामदम। संसार की आपत्ति विपत्ति से मारा हुआ व्यक्ति प्रणता नाम कामम ददाति अथवा द्यति। संसार की आपत्ति विपत्तियों से मारा हुआ व्यक्ति जब आपकी शरण में आ जाता है तो उसकी कामनाओं को पूर्ण करके हमेशा हमेशा के लिए कामनाओं की निवृत्ति कर देते भगवान से कामना पूर्ति में और संसार से कामना पूर्ति में फर्क यही है। संसार के माध्यम से किसी कामना की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी तो कामना वृद्धि को प्राप्त होगी, और भगवान के द्वारा किसी कामना की पूर्ति होगी तो कामना निवृत्त हो जाएगी। यही दोनों का फर्क है। इसलिए गोपियां कहती हैं, आपके जो चरण कमल है उनमें ही इतना प्रभाव है कि आपके चरणों की शरणागति कोई ले ले तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है और कामनाएं निवृत्त हो जाती है। ऐसे आपके चरण कमल है। और उनकी विशेषता क्या है, पद्मजार्चितम, पद्माज जाता पद्मजा कमला श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा अपने सुकोमल कर कमलों से करती, लक्ष्मी जी। और भागवत में तो एक जगह आता है कि भगवान के श्री चरण इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी अपने हाथों के स्पर्श से उनकी चरण सेवा नहीं करती। बोले फिर चरण सेवा कैसे करती है, बोले लक्ष्मी जी के हाथों में जो कांति है, प्रकाश है, उस प्रकाश से चरणों की सेवा करती हैं। अगर उनके हाथ लग जाएंगे तो ठाकुर जी के चरणों में चोट लग जाएगी, इतने कोमल है। ये वर्णन है भागवत में। आप उन महापुरुषों का जीवन देखे जिन्होंने ये चिंतन किया होगा, जिन्होंने ये सोचा होगा, जिन्होंने ये लिखा होगा, उनकी दिनचर्या क्या होगी। वो संसार में रह के तो ये सब नहीं हो सकता है। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एक संत कहते थे ये फुल टाइम जॉब है। जिसका जीवन ही कृष्ण के लिए है, जिसके पास और कोई काम नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहे जो संसार के काम का नहीं रहा, क्यों स्वामी जी, जो संसार के काम का नहीं रहा वही कृष्ण के काम का होता है, वही श्री कृष्ण के रास्ते में पूर्णता की अनुभूति कर लेता है। ओ महाराज, तो उन्होंने जो चिंतन किया महापुरुषों ने, ऐसे आपके चरण कमल लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती, तो बोले लक्ष्मी जी करती हैं। इस समय तो आप ब्रज में हैं, तो लक्ष्मी जी तो आपके चरणों तक पहुंचती ही नहीं, वो तो फूल पौधों की सेवा कर रही हैं आजकल ब्रज में। बोले इस समय भूदेवी करती, भूदेवी और श्री देवी भगवान की दोनों सेविका है। भूदेवी कैसे सेवा करती हैं आप सब जानते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी गोचारण करते थे तो पादप तरण धारण नहीं करते थे, खड़ाऊं पादुका चप्पल जूता कुछ नहीं पहनते थे। और वृंदावन में इस समय जैसे रास्ते हैं या सड़कें हैं वो तो थी नहीं, कंटकाकीर्ण जंगल था, कांटे थे करील के कांटे। तो श्री कृष्ण के गोपियों ने अभी अभी सोचा था कि हम जितना आगे जाएंगे उतने कांटे उनके पैरों में लगेंगे, तो क्या श्री कृष्ण के चरणों में कांटे लगते थे क्या? वर्णन तो नहीं मिलता कि किसी भी दिन किसी गोप ने श्री कृष्ण के चरणों से कांटे निकाले। तो कांटे थे और लगते नहीं थे, गोपियों को लगे, गोपियां कह रही हैं जब खोज रही हैं श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं लगते थे। बोले ये क्या चमत्कार था। बोले भूदेवी उनकी सेविका है ना, जहां जहां श्री कृष्ण के चरण आने वाले होते थे भूदेवी वहां के कांटों को छिपा देती थी, जमीन में दबा देती थी, सुकोमल हो जाती थी वो श्याम सुंदर। जहां लक्ष्मी जी अपने हाथों में उनके चरण कमल रखती हैं, भूदेवी उनके चरणों की इतनी सेवा करती है। धरणी मंडनम, क्यों? बोले वो जो चरण है ना वो तो भूदेवी की शोभा है। आज भी भगवान के वास्तविक चरणा चरण चिन्ह चित्रकूट जो लोग गए होंगे परिक्रमा में, भरत मिलाप के चरण चिन्ह अंकित है। कितने संतों को मैंने देखा है उस जगह में जाने के बाद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। जो राम भक्त है उनको लगता है ये वही चरण चिन्ह है जहाँ श्री राम और भरत मिले थे। इतना वियोग था दोनों के जीवन में कि पत्थर पिघल गया था, दोनों के चरण चिन्ह अंकित हो गए। ये तो शोभा है, बचा के रखते हैं। तो कहते हैं धरणी मंदनम, आपके चरणों की ये महिमा है प्रभो शंतमम, शांति प्रदान करते। चरणों का जो भी ध्यान करता है, जो भी आश्रय लेता है वो शांति प्रदान करते, शांति। शंतमम शांति माने ये शांति नहीं जो टेम्परेरी शांति है जो आप और हमको मिल जाती है पैसे में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी पद में, ये तो जाने आने वाली है, सापेक्ष है। वास्तव में शांति वो है जो प्रभु के मिलन में मिलती है, क्योंकि प्रभु का कभी अपने से अलगाव होता नहीं, इसलिए शांति भी कभी जाती नहीं। वो शांति देने वाले आपके चरण हैं। उन चरणों को क्या चाहती हैं आप? बोले हम तो हाथ में लेने की भी स्थिति में नहीं, जब लक्ष्मी जी डरती हैं, भूदेवी डरती हैं, तो हम उनको हाथ में कैसे लेंगे। बोले फिर क्या चाहते हैं? बोले आप हमारे हृदय पर रख दीजिए, उन चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए प्रभु, ऐसे आपके चरण है तो सारे संसार की आधी व्याधि आपके चरणों में मिट जाती है। तो क्या आपके जीवन में भी कोई आधी व्याधि है? है, क्या है? गोपियों के जीवन की आधी व्याधि क्या है? श्री कृष्ण वियोग की व्यथा, एक ही कष्ट है। प्रेमी भक्त के जीवन की पहचान यही है, दुनिया का कोई कष्ट उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। जो प्रेमी भक्त है कोई आवे जाए उसको कोई परवाह नहीं, परिवार रहे जाए उसको कोई परिवार नहीं, संपत्ति आवे जाए उसको कोई परवाह नहीं, प्रेमी भक्त के जीवन को अगर कुछ प्रभावित करता है तो भगवान का संयोग और भगवान का वियोग, बस दो ही उसके जीवन के पहलू है, और कोई पहलू नहीं होता है। तो आप उन चरणों को हमारे हृदय में रख दीजिए, जिससे हमारे हृदय की जो व्याधि है ना, कौन सी व्याधि, कृष्ण वियोग की व्याधि। प्रहलाद जी के लिए एक शब्द आया भागवत में, बोले प्रहलाद जी जब बचपन में बैठते थे तो बैठे बैठे कभी कभी हंसने लग जाते थे, कभी कभी रोने लग जाते थे, और कोई नहीं होता था, अकेले बैठे होते थे। सुखदेव जी से पूछा, महाराज क्या होता था अकेले बैठे बैठे, बालक, वो भी 4-5 वर्ष का बालक, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह महाराज? राहु केतु मंगल शनि, कौन सा ग्रह था? बोले ये नवग्रह नहीं था, वो 10वां ग्रह था। जो नवग्रह से पीछा छुड़ा देता है वो ग्रह लग गया था। वो कौन ग्रह था? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, भागवत का श्लोक है। कृष्ण रूपी ग्रह से उनकी आत्मा ग्रहित हो गई थी। वो कृष्ण आते थे तो हंसने लग जाते थे, और कृष्ण जाते थे तो रोने लग जाते थे। ये प्रहलाद की स्थिति का। तो जितने प्रेमी भक्त हुए वही दशा आज गोपियों की है। गोपियों का जीवन आप थोड़ा हम लोग गंभीरता से विचार करें, जिनके जीवन को पढ़ के सुन के इतना रस आता है, आनंद आता है, उनके जीवन में क्या होगा, ये तो भावना ही की जा सकती है। आज का एक बुद्धिजीवी उस बात को नहीं समझ सकता है, वो उसका फील्ड नहीं है। जो भक्ति के रास्ते पर नहीं आया उस रास्ते को नहीं समझ सकता है। तो महाराज, और आगे जो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं गोपियां, अटत यद भवान अन्निकाननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यता। आप जब गोचारण के लिए चले जाते थे जंगल में, एक त्रुटि, त्रुटि 1-2 मिनट का समय कैसा लगता था? युगायते, युग इव प्रतीयते, 1 मिनट का समय व्यतीत करना हमको युग के जैसे लगता था। आज क्या किसी को ऐसा लगता है? इतना समय बीत गया, इतनी आयु बीत गए, ठाकुर जिनको मिल गए उनका जीवन तो धन्य, और एक बार मिलने के बाद फिर मिलते रहते। लेकिन जिनको नहीं मिले, क्या कभी वो छटपटाहट होती है? इतने साल बीत गए, हम उसी ठाकुर की रोज पूजा करते हैं, रोज उसकी कथा सुनते हैं, रोज उसका पाठ करते हैं, लेकिन क्या कभी उसको देखने की छटपटाहट होती है? क्या कभी उसके मिलने के लिए तड़प होती है? क्या उसके लिए कभी आंसू निकलते हैं हमारे आंखों से? निकलते हैं तो तुम्हारी साधना ठीक हो रही है, और नहीं निकलते हैं तो नियम वाली करते रहो, एक न एक दिन ठीक होगी। वैधि भक्ति है। अगर कोई भाव उदय नहीं हो रहा है, रोमांच नहीं है, अश्रुपात नहीं है, लालसा नहीं है, स्वर गदगद नहीं होता है ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हुए, करुणा का अनुभव करते हुए, थोड़ा भी प्रेम होगा ना, इतना कृपालु और कोई हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है। जितने कृपालु ठाकुर जी हैं, वो थोड़ा सा देने के बाद बहुत कुछ देते, वो खाली देखते हैं कि ये हमको चाहता है कि नहीं, बस उनको कुछ चाहिए नहीं, हमसे आपसे उनको क्या चाहिए। गोपियां कहती हैं, 1 मिनट हमको युग के जैसे व्यतीत होता है। अब ये अनुभूति आप देखें, त्रुटिर युगायते, यही शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्लोक में लिखा, युगायतम निमेषेण। जो अनुभूति चैतन्य महाप्रभु की है वही अनुभूति गोपियों की है। कितने लोगों से आप तुलना करेंगे? उद्धव जी, ब्रह्मा जी तो इनके चरणों की धूली चाहते, सुखदेव जी के जो चित्त की अवस्था है वही अवस्था गोपियों की है। चैतन्य महाप्रभु की जो प्रार्थना है कृष्ण वियोग में, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहीण में, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक का श्लोक है। युगायितम, 1 निमेष हा कृष्ण तुम्हारे वियोग में युग के जैसे ज्यादा है। हमारी आंखों से इतने अश्रुपात होते हैं जैसे वर्षा ऋतु आ गई हो, सावन भादों का जैसे महीना आ गया हो। शून्यायितम जगत सर्वम, ये भी उसकी तीसरी पहचान है। तुम्हारे बिना ये संसार खाली लग रहा है, शून्यतम माने रिक्तता लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे महाराज जी से एक बार किसी साधक ने पूछा, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे महाराज? महाराज जी बोले, अभी तो नींद भी अच्छी आती है, भोजन भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, समाज, हाँ बोले हाँ सब अच्छा लगता है। बोले इसीलिए अभी दर्शन नहीं हो रहे। भगवान की जब उत्कंठा होती है, नींद गायब होती है, भूख गायब होती है, परिवार में रुचि नहीं रहती, ये मत सोचने कि हम बाबा जी बन गए तो सबको बाबा जी बना देंगे और कोई बनेगा नहीं, कहने से कोई बनता भी नहीं। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना इतना सहज रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। हम लोगों की प्रायः अवस्था, मानसिक अवस्था क्या होती है, कथा में भी रस आता है और जब हमारा पौत्र हमारे पास तोतली भाषा बोलता हुआ आता है तो उसमें भी रस आता है कि नहीं, और ज्यादा किस में आता है सच बताना। आश्रम में बैठे हो, जब पौत्र तोतली भाषा बोलता हुआ आपके चक्कर काटता या पीठ में चढ़ जाता है, उसमें ज्यादा रस आता है या कृष्ण कथा में ज्यादा रस आता है? हाँ या ना, किस में आता है कुछ तो बोलो, अपनी भाषा में आता है। हाँ महाराज बात सही है, मत बोलो, न बोलने का भी एक उत्तर समझ में आ जाता है। मौनम स्वीकृत लक्षण लिखा हुआ है, सच्चाई वही है। जरूर ऐसे महापुरुष यहाँ हैं, इस हाल में भी बैठे होंगे, जिनको भगवान ही अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वाभाविक, जो लोग कहते हैं महाराज भगवान का अनुभव नहीं होता है, भगवान के प्रति आपका कितना प्रतिशत लगाव है, कितना प्रतिशत है, 1%, 2%, 5%, 10%, कितना है? और संसार के प्रति कितना लगाव है? आप कहेंगे कैसे पता लगे? अच्छा, दुनिया को समय कितना देते हो, भगवान को कितना देते हो, उसी से पता लग जाएगा। भगवान को समय देना होगा तो बहुत खींच तान के 1 घंटा या 2 घंटा बहुत अगर दिया तो, नहीं तो बहुत लोगों की पूजा, स्नान हुआ और पूजा बाथरूम से प्रारंभ होती है हनुमान चालीसा और कपड़ा पहनते पहनते पूरा हो जाता है, उसके बाद ऑफिस निकल गए। भगवान देखते हैं इसके पास तो खाली बाथरूम वाला टाइम मेरे लिए बचा है, बाकी तो कोई टाइम ही नहीं। तो एक मेहमान के साथ भी आप ऐसा व्यवहार करो तो आपके घर नहीं आएगा, तो संसार का मालिक है, सारी दुनिया का संचालक है, वो देख रहा है कि तुम्हारा मेरे प्रति क्या भाव है, क्या व्यवहार है, फिर आप कैसे दावा हम और आप कर सकते हैं कि वो हमसे नहीं मिलता है, वो हमको दर्शन नहीं देता है, हम करते क्या है, उसको कुछ चाहिए नहीं हमसे, लेकिन वो देखता है हमारी भावना, प्रवृत्ति से भावना प्रकट होती, हम करते क्या है उसके लिए। गोपियां कहती है, त्रुटि युगायते, एक एक त्रुटि, एक एक निमेश, एक एक मिनट युग के जैसा व्यतीत होता है तुमको देखे बिना श्याम सुंदर। और एक विलक्षण बात गोपियां कहती हैं, जब आप लौट के आते हो गोचारण के बाद सायंकाल, आपके घुंघराले वालों में गायों के और बछड़ों के चरणों से उड़ी हुई धूल लगी होती है, क्या भाव है उन लोग का, वो श्रीमुख जब हम देखती हैं तो हमारी विरह व्यथा शांत हो जाती, लेकिन वहां भी एक व्यवधान आता है। गोपियों का भाव ध्यान से सुनना, वहां क्या व्यवधान आता है, अरे भगवान आ गए, गायों को लेके आ गए, दर्शन हो रहा है, अब क्या व्यवधान आता है? गोपियां कहती हैं, बीच में जो पलक गिर जाती है ना, ये हमको तकलीफ देती है। आप कल्पना कर सकते हो उन गोपियों का भाव, ये पलक गिरना उनको तकलीफ देती है, क्योंकि दर्शन में व्यवधान होता है। गोपियां कहती है, अगर ब्रह्मा हमारी मन स्थिति को समझता होता तो ब्रह्मा हमारी आंखों में पलक का निर्माण नहीं करता। ये क्या गोपियों का जीवन था, क्या गोपियों के विषय में आज का व्यक्ति विचार करेगा, जो कृष्ण प्रेम में नहीं आया, जो संतों का संग नहीं किया, और गोपियों के विषय में और रासलीला में क्या विचार करेगा, अपने बुद्धि के अभिमान में, अभिमान में, गर्व में कुछ भी लिख देते, कुछ भी बोल देते, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हाई लेवल एजुकेटेड, क्या करें, अरे तुम्हारी एजुकेशन का फील्ड अलग है, ये फील्ड अलग है। महाराज गोपियां कहते हैं, ब्रह्मा जड़ है, ब्रह्मा को जड़ कहना, ये भावा, भाव की पराकाष्ठा, जड़ उदीक्षताम पक्षमक दृशाम। जिस ब्रह्मा ने हमारी पलकों का निर्माण किया है उस ब्रह्मा की बुद्धि जड़ है। हमको कितना कष्ट होता है पलक गिरने में, तुम्हारे दर्शन का व्यवधान होने में, ये ब्रह्मा को शायद मालूम नहीं था। वो गोपियां कहते श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए सब कुछ सर्वस्व समर्पित हो चुका है, परिवार संसार छूट चुका है, छोड़ा नहीं है, छूट चुका है, और हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे आवाहन के बाद इस रात्रि के समय इस जंगल में जमुना पुलिन पर आई हुई है। श्याम सुंदर, इस समय आप कृपा करके हमारा परित्याग न करें, आप प्रकट हो जाए। और अंत में गोपियां जो कहती हैं, अंतिम बात जो कहती हैं, जिसके बाद गोपियां गोपी गीत की प्रार्थना करते हुए बेहोश हो जाती, फिर प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है गोपियों की, जिसके बाद और किस भाव से बेहोश होती है देखना, अपने कष्ट से नहीं। एक एक बात आप गोपियों के विचार करें, किस भाव से व्यथित होती है, किस भाव से बेहोश होती है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेशु भीता शने प्रिय दधि मही कर्कशेशु। श्याम सुंदर, जिन आपके श्री चरणों को, अभी अभी आपने सुना गोपी गीत में, जिन आपके श्री चरणों को हम अपने हृदय में रखने में भी बड़ा संकोच अनुभव करती थी कि हमारा हृदय कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, चोट न लग जाए, हमको डर लगता था, उन्हीं चरणों से आप इस कंटका किरण जंगल में अंधकार में विचरण कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रहे होंगे, ये विचार करने से हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। और ये भाव आते ही गोपियों का गोपी गीत भी छूट गया, अर्धमूर्छित अवस्था में चली गई। आप विचार करें, मूर्छित भी हुई दोबारा तो किस भाव में हुई, अपने कष्ट में नहीं, हमारा जीवन चला जाएगा इस सोच में नहीं, हमारा क्या होगा इस सोच में नहीं, श्री कृष्ण के हृदय चरण में कांटे चुभ रहे हैं, ये भाव आते ही गोपियां बेहोश हो जाती। कितना तादाद में, ये तादाद में मैंने एक, जब मैं घर में था बचपन में, तो एक व्यक्ति में तादाद में देखा पौत्र के प्रति, पौत्र को 106 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और जो उसका पितामा था ग्रैंडफादर, उसको अंजाइना पेन होने लग गया। पौत्र के साथ बहुत ममत्व था, बहुत प्रेम था, अरे भाई टेम्परेचर उसको है तो अंजाइना पेन उसको क्यों हो गया, इतना एकत्व है, इतना आत्मीय भाव हो गया है कि पौत्र का कष्ट ग्रैंडफादर को अनुभव हो रहा है। अगर संसार के ममत्व में भी इतना कष्ट हो सकता है तो ये तो दिव्य प्रेम था गोपियों का, जहां कोई स्वार्थ नहीं था, जहां कोई अपनत्व नहीं था, तो गोपियों का तो बेहोश हो जाती। गोपियां बेहोश हो गई, गोपी गीत तो रुक गया, श्री कृष्ण अंतर्धान है, अब कथा आगे कैसे बढ़े। जो गोपियां गा रही हैं वो सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को, अब क्या सुनावे। सुखदेव जी देखते हैं कि बेहोश हो गई, अब उसका वर्णन करते। संत का प्रवचन ही कथा नहीं होती है, ध्यान रखना, संत का जीवन ही कथा होती है। वो जो जीता है, उसका जो आचरण है, वही एक कथा बन जाती है, वही वास्तव में शास्त्र बन जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, साधक अपना जीवन शास्त्र के अनुसार चलाता है, और संत का जो जीवन होता है वो शास्त्र बन जाता है। ये शास्त्र का ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचो अर्थो अनुधावती है, उनकी वाणी के पीछे उसका अर्थ चलता है। ऋषियों का जीवन ही शास्त्र होता है। इसी प्रकार गोपियां जो कह रही हैं वही कथा नहीं है, गोपियां जो जीवन है, बेहोश हो गई उसका वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुश्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को फिर संबोधित करते हैं, राजन सावधान, जानते हो कृष्ण दर्शन, लोग पूछते हैं लालसा का स्वरूप क्या है, कृष्ण प्रेम की अभिलाषा का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न प्राय लोग पूछते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण दर्शन की अभिलाषा का यही स्वरूप है जो इस समय गोपियों का जीवन है। ऐसा जीवन हो जाए, सोचो कृष्ण दर्शन की सच्ची लालसा उसके जीवन, कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा की मूर्ति मति स्वरूप भूता गोपिया रुरुदु सुस्वरम रोती रोती बेहोश हो रही हैं। लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है, रुरुदु सुस्वरम, बोले बड़े स्वर के साथ रो रही है। क्या रोना स्वर के साथ होता है? क्या गाना स्वर के साथ होता है? और वो भी कृष्ण वियोग में जो रुदन है, अभिनय में रुदन हो तो भी कहा जा सकता है कि स्वर के साथ कोई रो सकता है, अभिनय का जो रुदन है। लेकिन गोपियों का सच्चे वियोग की व्यथा का रुदन, वो क्या सस्वर होता है? सुखदेव जी कह रहे रुरुदो सुस्वरम, बड़ा सुंदर स्वर था, क्या उस स्वर के सहित था? सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों के स्वर के ऊपर सारे स्वरों को न्योछावर किया जा सकता है जो गोपियों के हृदय से इस समय स्वर निकल रहा है, कृष्ण प्रेम का स्वर। वास्तव में स्वर वही है, हाँ? सुस्वरम, जब रोने लग गई, बेहोश हो गई, भगवान कृष्ण तो वही थे, कहीं से उनको बाहर से तो आना नहीं था, और यहाँ भी है, वहां भी थे, यहाँ भी है, हाँ? आज भी अगर कोई व्यक्ति उनके प्रेम में व्याकुल होके बैठ जाए तो आज भी ठाकुर जी आते हैं। ग्वारिया बाबा झगड़े पे बैठ गए अनशन करके, अब इनके खिलाफ प्रचार करूंगा, प्रकट हो गए। इस कलयुग में 50 साल पहले की घटना है वृंदावन की, वो भी 4-5 साल पहले की नहीं, 50 साल पहले की घटना है। ठाकुर अकेले नहीं, ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ प्रकट हुए ग्वारिया बाबा के सामने। तो आज भी कोई बैठ जाए लेकिन प्रेम से, केवल प्रेम से, और किसी कामना से बैठेगा तो ठाकुर से ज्यादा चतुर और कोई नहीं, ये भी ध्यान रखना। वो बहुत चतुरन को सरदार, वो बहुत कुशल है, बहुत चतुर है। एक बार उड़िया बाबा जैसे किसी भक्त ने बहुत दुराग्रह किया, बाबा हमको दर्शन करा दो। बाबा बोले भजन करो, भगवान की जब इच्छा होगी वो योग्य समझेंगे, दर्शन दे देंगे। भगवान को क्या करना है ये निश्चय तुम क्यों करते हो? तुमको क्या करना है वो निश्चय तुमको करना है, भगवान बिल्कुल सावधान है। नहीं माना बाबा, आपको दर्शन हुए आप करा सकते हैं, आप करा दीजिए। बाबा समझ गए कि कोई जरूर बीच में कुछ गड़बड़ है, हाँ, इतना दुराग्रह कैसे। बाबा ने कहा अच्छा कल 4 बजे आना ब्रह्म मुहूर्त में, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। वो आगे बड़ा खुश था, बाबा दर्शन कराएंगे। और महापुरुष तो बड़े कुशल होते। उड़िया बाबा ने कहा कि देखो भगवान आ गए बैठे हुए हैं, मेरे से उन्होंने एक प्रश्न पूछने के लिए तुमसे कहा है। बोले पूछिए पूछिए। बोले भगवान ने कहा है कि अभी उसकी साधना इतनी उच्च कोटि की नहीं है कि मेरा दर्शन कर सके, मैं तुम्हारे कहने से दर्शन दे दूंगा, माने बाबा के कहने से, लेकिन इस दर्शन के फलस्वरूप उसके शरीर में कुष्ठ हो जाएगा, इसके लिए अगर वो तैयार हो तो मैं दर्शन दे देता हूँ। बाबा ने कहा है, भगवान ने पूछा है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भगवान को बोल देता हूँ। और भक्त बोलता है ठहरो बाबा थोड़ा, हाँ ठहरो, मैं विचार करता हूँ। बाबा मुस्कराए, बोले विचार कर ले। 5 मिनट में बोलता बाबा बाद में दर्शन कर लूंगा। बाबा और हंसे, बाबा बोले तो अब सच बता तू दर्शन के लिए इतना पीछे क्यों लगा था, क्यों करना चाहता? अब तो भगवान आ गए, अब क्यों नहीं कर रहा, क्यों बोलता बाद में कर लूंगा। वो बोला बाबा मैंने देखा कि उड़िया बाबा जी को भगवान के दर्शन हुए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी को भगवान के दर्शन हुए, तो लोग इनकी इतनी पूजा कर रहे, तो मेरे को दर्शन हो जाएंगे तो मेरी भी पूजा होगी, इसलिए मैं पीछे लगा था, लेकिन अब कुष्ठ हो जाएगा तब तो दर्शन करना ठीक नहीं। बाबा बोले बावरे, अरे भगवान के दर्शन से कुष्ठ होता है या कुष्ठ मिट जाता है? दर्शन हो जाए तो कुष्ठ मिट जाएगा, तेरा भरोसा ही नहीं था, तेरा भरोसा कहाँ था? तो अगर चतुराई है तो भगवान तो चतुरों के भी चतुर है, वहां चतुराई नहीं चलेगी। यहाँ पर महाराज गोपियों की यथार्थ व्याकुलता है, भगवान एक मिनट का विलंब नहीं किए। तासा माविरभूत छौरीश मेहमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा तासाम मध्य एव आविरभूत। उन्हें गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? बड़ा विलक्षण स्वरूप दृश्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। बोले पीताम्बर से अपने हाथ बांधे हुए और हाथ जोड़े हुए, जैसे एक अपराधी होता है, अपराधी के हाथ बांध दिए जाते हैं और पकड़ के ले जाया जाता है, भगवान ने स्वयं अपने हाथ बांध लिए। पीताम्बर धरह सृगवी माला पहने हैं और मुस्कराते हुए प्रकट हुए। ये तीनों घटनाएं बड़ी अजीब है, पीताम्बर से हाथ क्यों बांधे और गोपियां रो रही हैं तो मुस्कराते हुए क्यों प्रकट हुए? भगवान हाथ इसलिए बांधे हैं कि गोपियों के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। आपने निश्चल प्रेम किया, फिर भी मैं छिपा, मैं अपराधी हूँ। फिर मुस्करा क्यों रहे? अपराधी मुस्कराता तो नहीं, अपराधी तो गिल्टी फील करता है। मुस्कुराते क्यों रहे हैं? भगवान ये भी जानते हैं, गोपियों को अपनी व्यथा से कष्ट नहीं होता है, गोपियों को मेरी व्यथा से कष्ट होता है। पहले ही मेरी व्यथा से बेहोश थी, अगर मैं रोता हुआ प्रकट हो जाऊंगा तो इनकी व्यथा बढ़ जाएगी और इनका कहीं जीवन न चला जाए। तो अंदर से दुखी थे, बाहर से मुस्करा रहे थे। ये कृष्ण भगवान का चमत्कार, ये उनका विलक्षण भक्त वात्सल्य। भक्त का कितना ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, दूसरा रखेगा क्या? प्रकट हो गए मुस्कराते हुए, क्या सौंदर्य था, बोले साक्षात मन्मथ मन्मथा। मन्मथ माने कामदेव, मनहा मथनाती, जो मन को मंथन कर दे उसका नाम मन्मथ। बोले मन्मथस्यापि मनः मथनाती मन्मथ मन्मथः, जो कामदेव के मन को भी मंथन कर दे उसका नाम श्री कृष्ण है। कामदेव भी जिनके सौंदर्य को देख करके लज्जित होने लग जाए उसका नाम श्री कृष्ण है, उसका नाम श्याम सुंदर है। वो प्रकट हो गए, इतना सौंदर्य माधुर्य देखते ही गोपियों के मृत शरीर में जैसे प्राण का संचार हो गया हो। सारी गोपियां उठ के एक साथ खड़ी हो जाती हैं, बोलिए राश बिहारी भगवान की, राश बिहारी भगवान की। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला। अबलाह निर्बल हो चुकी थी, और वास्तव में जब हम निर्बल हो जाते हैं तभी ठाकुर की अनुभूति भी होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अबला निर्बला। सारी शक्ति समाप्त हो चुकी, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, साधना की शक्ति। साधना का क्रम भी यही है, साधना की शक्ति का भरोसा भी जब छूट जाता है तब ठाकुर का प्राकट्य होता है। ठाकुर दिखाता है साधना एक पात्र है, साधना एक आधार है, उसके बिना ठाकुर के दर्शन की योग्यता नहीं आएगी। लेकिन दर्शन तो कृपा से ही होता है। साधना में जहाँ निराश हो गया व्यक्ति करते करते, कितने दृष्टांत नारद जी का है, गोपियों का है, अरे हमारे गुरु जी का है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिन लोगों ने पढ़ी होगी, छोटा सा लेख छपा था उसको छोटी पुस्तिका के रूप में अभी अलग कर दिया गया है, अलग से पुस्तिका छपी है, कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, छोटी सी पुस्तिका है। उस लेख में भगवान उनको कैसे दर्शन हुए श्री कृष्ण के, उसका पूरा वर्णन। गायत्री का पुरस्रण किया, श्री कृष्ण मंत्र का पुरस्रण किया, ठाकुर जी का न दर्शन हुआ न स्वप्न आया। गंगा जी स्नान करने गए थे, किनारे पे माला रख दी, कौआ माला उठा ले गया, गंगा जी में डाल दिया, और निराशा। माला में घी लगा था वो कौआ, अब ईश्वरी लीला थी और कौआ स्वाभाविक, वो एक अलग घटना है, उसको किसी भी दृष्टि से देखा जा सकता है। निराश होके घर आ गए, माला भी गई, दर्शन भी नहीं हुआ, पुरस्रण भी पूरा हो चुका, इससे ज्यादा कर नहीं सकते। उन्होंने वर्णन किया है, गांव की घटना है, गृहस्थ में थे तभी दर्शन हो गया था, सन्यासी तो बाद में हुए। महाराज बोले अपने कमरे में बंद में बैठे हुए थे, रो रहे थे, इससे ज्यादा साधना मैं कर नहीं सकता, दर्शन हुआ नहीं, ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। अत्यंत वियोग व्यथा उनको सता रही थी, अचानक देखा कमरा प्रकाशित हो गया। ध्यान से देखा कोई खिड़की नहीं खुली, कोई लाइट नहीं जली, प्रकाश कहां से आया? लेकिन प्रकाश पूरे कमरे में, प्रकाश, कमरा बंद है। और एक मिनट के बाद लगभग 11 वर्ष की अवस्था का एक बालक, जो सांवरा नहीं था, गोरा था, वो प्रकट हुए। वो थे ठाकुर नृत्य गोपाल भगवान, कृष्ण भगवान, जो आज भी हमारे आश्रम में, वृंदावन आश्रम में नृत्य गोपाल भगवान का विग्रह है, वो गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही उनकी प्रतिष्ठा, उसी रूप में उनको दर्शन हुए थे। बोले इधर से इधर, इधर से इधर, नाचते नाचते बहुत देर तक दर्शन दिया। बोले हम चाहे के भी ना उठ सके, ना प्रणाम कर सके, शरीर में जड़त तो आ गया, जड़ी भाव आ गया। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक ही शब्द कहा, आज के बाद अपने को कभी दीनहीन और जीव मत स्वीकार करना, जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। बस उपदेश देके महावाक्य का उपदेश। और ये उनकी अवस्था 18-19 साल की थी, तब की घटना है। संन्यास तो बाद में लिया, उसके बाद गीता प्रेस में सेवा किया, बाद में संन्यास लिया। तो ये तो हमारे गुरुदेव के जीवन के, तो माने कहने का अर्थ क्या है, साधना की शक्ति भी जहां समाप्त हो गई, ठाकुर बिल्कुल सावधान है। ठाकुर एक मिनट की भी विलंब नहीं कर सकते, प्रकट हो गए, गोपियां उठ के खड़ी हो गई, और आप इनकी सरलता की पराकाष्ठा देखें, खड़ी हो गई बड़ी प्रसन्न, एकदम से परिवर्तन हो गया शरीर में, और उठने के बाद क्या किया, सब गोपियों ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, गोपियों को डर लग रहा है कि फिर अगर कहीं चले गए तो, माने गोपियों को इतना भी अभी समझ नहीं है कि क्या अगर पकड़ लेंगे तो क्या छुड़ा के नहीं जा सकते, क्या क्या गोपियों में इतनी ताकत है कि कृष्ण को पकड़ के रख सकते, लेकिन सरलता की पराकाष्ठा, पकड़ लो कहीं भाग ना जाए। क्योंकि अभी भी जब वियोग होता है तो ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व तो का अनुभव होता है, संयोग होता है तब तो नंद के लाला के रूप में ही अनुभव होते, माधुर्य प्रकट होता है, ईश्वर्य छिप जाता है, ईश्वरत्व छिप जाता है। पकड़ के खड़ी हो गई, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कंधा पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, हजारों गोपियां हैं सब पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। दो गोपियों ने श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा। यहां पर वर्णन है, एक तो ध्यान से श्री कृष्ण के श्रीमुख को देखा और आंख बंद करके महाराज बैठ गई ध्यान में। अरे ये कौन थी, बोले होगी कोई महाराज कोई चांगदेव या महाराज गोरखनाथ, जो बड़े बड़े योगी हुए, ये कोई योगिनी गोपी थी, योग का जिसको अभ्यास था। बोले वो क्या कर रही थी, बोले वो डर गई थी, बाहर के कृष्ण तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, इनको ध्यान के माध्यम से हृदय में ले आओ, हृदय के कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हृदय में उनको पकड़ के रखी थी। क्या क्या भाव थे गोपियों के, बाहर के कृष्ण खड़े हैं सामने खड़े हैं, नेत्रों के रास्ते अंदर ले आई, आंखें बंद करके बैठ गई, जब नेपोलियन पे इनको पकड़ के रखूंगी, बाहर वालों को तो मैं नहीं पकड़ सकती। और एक गोपी और है जो श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा, दो गोपियों ने नहीं पकड़ा, इस गोपी का नाम नहीं है जो योग के अभ्यास या योगिनी जो भी हो, दूसरी गोपी जो है वो श्री कृष्ण को थोड़ा टेढ़ी नजर से देख रही, प्रेम की जो टेढ़ी नजर होती है ना, थोड़ा नाराजगी मान की अवस्था, ये किशोरी जी, ये राधा रानी। राधा रानी को एक बार आश्चर्य होता, भले वो लीला में हो रहा है, अभिनय में हो रहा है, श्री कृष्ण इतना अनुराग, एक तरफ तो इतना अनुराग है कि चरण सेवा भी करते हैं, और एक तरफ इतना वैराग्य है कि एक बात में छोड़ के गायब हो जाते हैं, इसी का नाम ईश्वरत्व है। परस्पर विरुद्ध धर्मा श्रयत्व, अनुराग है तो पूर्ण और वैराग्य है तो पूर्ण, इसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर में परस्पर विरुद्ध धर्म पूर्ण रूप से विद्यमान होते, जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होते। किशोरी जी की चरण सेवा करते हैं ठाकुर जी, सेवा कुंज में करते हैं, निधिवन में करते हैं, अरे महाराष्ट्र में भी तो किया। एक बार हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा था, महाराज किशोरी जी की चरण सेवा श्री कृष्ण भगवान करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अब गुरुजी तो महाराज क्या उनके विलक्षण थे, प्रश्न वो पर्ची में लिख के देते थे, प्रश्नोत्तर होता था। गुरुजी ने कहा कि लगता है प्रश्नकर्ता का विवाह नहीं हुआ है, खड़ा हो जाए कौन है, वो खड़ा हो गया, सही में वो अविवाहित था। बोले कि ये तुमको अनुभव या तो पूर्ण प्रेम आवे भगवान के प्रति तो होगा, या विवाह कर लो तो पता लगेगा। कहने का अर्थ क्या है, माने अब वो ठीक है उसके स्तर पर वो जवाब देते थे, गुरुजी के जवाब कौन पूछ रहा इसके आधार पे होता था, एक ही प्रश्न के अनेक जवाब होते थे। किशोरी जी की, अरे भगवान कृष्ण तो अर्जुन की सेवा करते हैं, अर्जुन की ही नहीं अर्जुन के रथ के घोड़ों की सेवा करते हैं, तो किशोरी जी तो बहुत आगे हैं। भगवान का स्वभाव है भक्तों की सेवा करना, आज भी संतों की सेवा करते हैं। अरे लाला बाबू को रात में बरसते हुए वर्षा के समय दूध देने, लाला बाबू तो अभी हुए, भगवान कृष्ण गए थे, भगवान कृष्ण का स्वभाव है। भागवत में दो जगह आया है, भगवान की भक्ति सब करते हैं, लेकिन भगवान किसकी भक्ति करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों की, भगवान भक्त भक्तिमान। तो किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही है, इतना वैराग्य। मैंने तो यही कहा था मेरे को ले चलो और आप अंतर्धान हो गए, भगवान कृष्ण ही फिर मनाते हैं किशोरी जी, अब यहाँ खड़े रहने से समय व्यतीत करने से तो कोई फायदा नहीं, चलो जमुना पुलम पे चलते हैं और रासलीला करते हैं। जमुना पुलन पे सबको लेके आ गए। जमुना जी का पुलन रासलीला के लिए एक बड़ा सुंदर रंगमंच बन गया है। रंगमंच, क्या वहां कोई कलाकार था बनाने वाला, रंगमंच बनाने वाला? बोले जमुना जी ने बनाया, कालिंदी ने, चतुर्थ पटरानी होने वाली भगवान कृष्ण की कालिंदी। हाँ, कालिंदी जमुना जी, अधिष्ठात्री जो देवी है जमुना कालिंदी, वो चौथी पटरानी है भगवान कृष्ण के, जो आगे होने वाली। अभी से सेवा प्रारंभ की जिससे भगवान खुश रहे। तो बोले जमुना जी ने कैसे रंगमंच तैयार किया, आप देखेंगे। समुद्र के किनारे जाएं या किसी नदी के किनारे जाएं, जहाँ ज़्यादा लोग ना जाते हों, लहरों से बालू इतनी व्यवस्थित हो जाती है, इतनी बराबर हो जाती है। आप समुद्र के किनारे देखते होंगे कि आप इतना बराबर रंगमंच बना ही नहीं सकते। तो लहरों के माध्यम से जमुना जी ने बहुत विशाल एक बालूमय, बालुकामय रंगमंच तैयार किया हुआ था। भगवान कृष्ण हजारों की संख्या में गोपियों को लेकर के, शरद पूर्णिमा की चांदनी खिली हुई है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, पुष्पों की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु फैल रही है, और भगवान कृष्ण गोपियों को लेकर के सुंदर दृश्य में वातावरण में पहुंच जाते। गोपियों चलो महाराज करें। भगवान ही बार बार बोलते, आप एक एक बार अगर आप देखेंगे, प्रारंभ से लेके बाल लीला से लेके महाराज तक, गोपियों के चित्त को भगवान ने छीना है, चोरी किया है। इतना अच्छा जीवन जिन गोपियों का है, जिनके चित्त की लालसा भगवान के हृदय में है। हमारे गुरु जी कहते थे, अपना जीवन ऐसा बनाओ ना, भगवान की शिकायत क्यों करते हो, नहीं मिलते। ऐसा जीवन बनाओ कि भगवान को लालच आ जाए कि ये मेरा भक्त मेरे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। जैसे गोपियों के लिए था, किशोरी जी के लिए था, हमारा जीवन ऐसा हो। एक संत थे, गुरु जी उनके साथ बड़ा प्रेम करते थे, और उनको कभी कभी बोलते थे, वो दीक्षा संन्यास उन्होंने किसी दूसरे संत से ली थी, वो नाम नहीं लेना। गुरु जी कहते थे, ये हमको इतने अच्छे लगते हैं कि ये हमको अपना गुरु माने कि ना माने, हम इनको अपना शिष्य मानते हैं। ऐसा जीवन हो ना कि गुरु के मन में भी लगे कि हमारा शिष्य है। ऐसा जीवन हो ना, भगवान के मन में लगे कि हमारा भक्त है। भगवान द्रवित हो जाए, भगवान आ जाए सुनने के लिए। जैसे नरसिंह मेहता से केदारा राग सुनने के लिए ठाकुर आते थे ना, जब नरसिंह मेहता की गाड़ी टूट गई, नानी भाई का भात भरने जा रहे थे, आप कथा सब जानते, बेटी का भात भरने जा रहे थे, गाड़ी टूट गई। भक्तों की गाड़ी भी ऐसा ही होती है महाराज, भगवान ही चलाते, वो टूटती फूटती रहती है। टूट गई रास्ते में, अब खड़े हो गए। अब ठाकुर जी महाराज गाड़ी सुधारने वाले का वेश बना के आ गए, नरसिंह जी अपनी गाड़ी में हमको भी बैठा लो। नरसिंह जी बोले, गाड़ी चले तब तो बैठा लूँ, गाड़ी तो टूट गई है। वो तो ठाकुर जी थे, लेकिन वो सुधारने वाले का वेश बनाए। बोले नरसिंह जी, गाड़ी सुधारने का काम तो मैं करता हूँ। तो अच्छी बात है महाराज, सुधार दीजिए, गाड़ी ठीक कर दी। बोले नरसिंह जी, हमको गाड़ी चलाना भी अच्छा आता है। नरसिंह जी, भगवान से अच्छी गाड़ी कौन चलाएगा? नरसिंह जी बोले, बड़ी कृपा, आप चलाइए। अब नरसिंह जी को संकोच हो रहा है, संपत्ति पैसा तो रखते ही नहीं थे, इन्होंने मेरी गाड़ी ठीक की, अब गाड़ी भी चला रहे हैं, इनको कुछ तो देना चाहिए। नरसिंह जी ने पूछा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपने इतना मेरा काम किया। ठाकुर जी कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सुना है आप केदारा राग बहुत अच्छा गाते हैं। दिया हुआ उन्हीं का है, लेकिन इतना भाव से नरसिंह जी गाते हैं कि भगवान सुनने के लिए कारपेंटर बन के नरसिंह की गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये है भाव, हमारा भाव ऐसा हो ना कि ठाकुर जी की इच्छा हो जाए कि इनका भजन सुने, इनकी कीर्तन सुने, इनकी पूजा में पहुंच जाए। वर्णन आता है भगवान की बाल लीला में, नंद बाबा जब पूजा करते थे तो एक दिन ठाकुर जी ने बड़ी लीला की, बाल कृष्ण ने, और भोग लगाते थे ध्यान करके, विष्णु भगवान का भोग लगाते थे। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर जी स्वीकार करो भोग, वो लाला वहीं बैठा था बालकृष्ण, जहाँ उन्होंने स्वीकार करो, लाला लड्डू उठा के खा गए। आँख खोला तो वो लाला लड्डू खा, अरे अरे झूठा कर दिया, झूठा कर दिया भगवान का भोग। अब वो लाला को दूर छोड़ के आए, फिर दूसरा भोग लगा के लेके आए, फिर आँख बंद की, फिर प्रार्थना की, ठाकुर जी भोग स्वीकार करो, लाला फिर खा गया। अब नंद बाबा को बड़ा समस्या हो रही है कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, ये खा जाता बीच में। अब उनको तो पता ही नहीं कि जिनका ध्यान करता हूँ वो यही है। तो माने इतना वो प्रेम में उस दिन उनको परेशान किया, बार बार भोग लगाओ बार बार ये खा जाए। बाबा ने बार में डांटा, तू मानता नहीं? बोले आप ही तो मेरे को बुलाते हो कि खा जाओ। एक तरफ बुलाते हो एक तरफ डांटते हो, मैं क्या करूं मेरे साथ। तो बाबा को लगा कि है कौन, मेरा बेटा है या भगवान है। थोड़ा उनको जैसे ही लगा अपनी माया को प्रेरित कर दिया, उनके ज्ञान को ढक दिया। इनको अगर ज्ञान हो गया कि मैं भगवान हूं तो आगे से लीला नहीं होगी। तो ये उनका मन हो जाए, जैसे बाबा का लड्डू खाने के लिए स्वयं आ गए, नरसी की गाड़ी चलाने के लिए स्वयं आ गए, केदारा राग सुनने के लिए स्वयं आ गए, ऐसा जीवन हुए ना, तो वही जीवन तो गोपियों का है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों समय व्यर्थ गवाने से फायदा नहीं, चलो महाराज करते। बड़ा सुंदर समय, इतनी सुंदर चांदनी, इतना सुंदर दिव्य वातावरण है, सुंदर पुष्पों की सुगंध है, सुंदर वायु है, आसमान में विमानों से भरा हुआ है, देवता स्वर्ग के देवता खड़े हुए इस लीला को देखने के लिए। गोपियों ने कहा जरूर, हमने तो उपासना इसीलिए की थी, आपने वरदान भी दिया था, महाराज तो करना ही है, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न आ गया है। प्रश्न? ठाकुर जी समझ गए प्रश्न नहीं होगा, मेरे प्रति आक्षेप होगा। प्रश्न गोपियों के मन में, प्रश्न वो भी कृष्ण को लेके, कभी प्रश्न नहीं किया आज तक किसी बात को लेके। अच्छा तो कुछ पूछना चाहती हो? बोले हाँ। अब यहाँ फिर विनोद करते श्री कृष्ण, कहते हैं गोपियों जिनसे कुछ पूछा जाता है या सुना जाता है उनको एक आसन देना पड़ता है, और ऊंचा आसन देना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने मेरे को बैठा ला, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन आप वक्ता के रूप में चुनाव करेंगे तो ऊपर बैठाना पड़ेगा, दूसरा वक्ता होगा तो मैं नीचे बैठूंगा, तो ये मर्यादा है। वक्ता को ऊपर बैठाते, व्यासासन देते। भगवान विनोद करने लग गए, गोपियों आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हो तो व्यासासन की व्यवस्था करो। भगवान जानते हैं जमुना के किनारे जंगल में रात्रि के समय व्यासासन की व्यवस्था कहाँ से होगी, लेकिन छेड़ रहे। जीव गोस्वामी जी कहते हैं जो ठाकुर गोपियों से इतनी छेड़छाड़ कर रहा है, जिन गोपियों से इतना हंसी विनोद कर रहा है, जो संसार का मालिक है, जिसके एक संकल्प से सृष्टि हो जाती है, वो गोपियों से व्यासासन मांग रहा है, वो गोपियाँ क्या सामान्य गोपियाँ हो सकती हैं? कितना सौभाग्य था उन गोपियों का, कितना दिव्य जीवन था उन गोपियों का, कितना शुद्ध प्रेम था उन गोपियों का, जिनसे ठाकुर मांग रहा है, ठाकुर याचना कर रहा है, व्यासासन बनाओ मेरे बैठने के लिए। विनोद कर रहे हैं, जानते हैं कि गोपियां व्यासासन कहाँ से बनाएंगी, व्यासासन नहीं बनेगा तो प्रश्न नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं हो सकता तो मेरे ऊपर आक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है गोपियां, उनको भी तो बुद्धि वही दे रहे थे। गोपियों ने कहा अभी बनाती हैं व्यासासन। ठाकुर जी को लगा व्यासासन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? हजारों की संख्या में गोपियां थी, दुपट्टा बिछाने लग गई बालू के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, हजार दुपट्टे बिछा दिए। और मुस्करा करके ललिता विशाखा ने कहा व्यास जी महाराज व्यासासन तैयार है, विराजिए आसन पे बैठिए, फिर हम प्रश्न पूछें। सुखदेव जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण मुस्कराते हुए चल पड़े व्यासासन में बैठने के लिए, लेकिन सुखदेव जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों यहाँ पे आंसू क्यों आ रहे हैं? प्रेम के कारण। राजन ये वही परमात्मा है, ये वही ठाकुर है जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी नहीं आता। ये आसन कैसा था जिस पे बैठने के लिए जा रहे हैं? ये दुपट्टे कैसे थे? गोपियां जब रो रही थीं इन्हीं दुपट्टों में अपना काजल पोंछा था, आंसू पोंछे थे, पसीना पोंछा था, उन्हीं दुपट्टों से आसन बिछाया हुआ है। सुखदेव जी का कंठ गदगद होता है, आंखों से अश्रुपात होने लग गया, प्रेम की पराकाष्ठा जो संतों के हृदय में कमल के आसन पर नहीं विराजते, आज प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों के अश्रु पूरित अश्रु युक्त दुपट्टों के आसन पर बिराजने के लिए ठाकुर जी चल पड़े। सुखदेव जी भावावेश में आ जाते हैं, कथा थोड़ी देर के लिए रुक गई। सुखदेव जी जिस कथा का वर्णन करते करते इतने डूब जाते हैं, और सुखदेव जी कौन है? दिगंबर अवधूत महापुरुष, वो जिस कथा का वर्णन करते करते डूब जाते हैं, वो कथा कितनी दिव्य होगी, वो लीला कितनी दिव्य होगी। सुखदेव जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया, कथा थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर अपने को संभाला। तब तक ठाकुर जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हो गए। गोपियां नीचे बैठी हुई हैं। ठाकुर जी ने मुस्कराते हुए कहा, गोपियों पूछो, क्या प्रश्न है आप लोगों का? गोपियां, श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं, गोपियां मुस्करा तो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रणय कोप जानते हो, प्रणय रोष थोड़ा सा है। ईशत कुपिता बभाश्री लिखा, ईशत माने थोड़ा सा, रोष के साथ कहती है, कन्हैया हमने तीन तरह के लोग सुने, हम पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन सुना है हमने कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, भजतोन भजन्ते क एक एतद विपर्ययम नो भयांशा भजन्ते क एतन्नो ब्रूहि साधु भो। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो बिना प्रेम किए प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। इन तीनों तरह के लोगों को ठीक ठीक उदाहरण के साथ हमको समझा दो, ये कौन होते? श्री कृष्ण समझ गए, प्रश्न नहीं है, सीधे सीधे मेरे ऊपर आक्षेप है कि मैं क्यों गायब हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोलना प्रारंभ करते हैं। तो बोलना तो अब आज ही करें कि कल करें? थोड़ा है आप, आज तो शनिवार है, जल्दी तो नहीं ना आप लोगों को? 5-10 मिनट और सुना दूं ना? स्वामी जी तो अनुमति दे चुके हैं, आप लोगों से कहना। तो भगवान कहते हैं मिथो भजंत ये सख्या स्वार्थे कांत्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। गोपियों जो प्रेम करने, देखना ध्यान से सुनना, आजकल प्रेम प्रेम बहुत लोग चिल्लाते हैं, प्रेम के लिए मर मिटते, जीवन खराब कर देते, परिवार खराब कर देते, प्रेम क्या होता है? यहाँ श्री कृष्ण के मुख से सुनो प्रेम क्या होता है। बोले जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उसका नाम प्रेम नहीं, वो व्यवहार है, व्यवहार वो सज्जनता है। सज्जनता, आपने हमारे लिए कुछ किया, हमने उससे थोड़ा ज्यादा आपके लिए कुछ कर दिया, ये सज्जनता है, ये व्यवहारिकता है। आज तो सज्जनता भी नहीं रही लोगों में, ये सज्जनता है, इसका नाम प्रेम नहीं, ध्यान रखना। और बोले हम कुछ भी ना करें फिर भी हमेशा जो हमारी भलाई करता रहे, हमारा हित सोचता रहे, उसका नाम प्रेम है। उसका नाम प्रेम है। और वो दो ही में होता है, बुरा मत मानना, ईश्वर में या ईश्वर प्राप्त भक्त में। जो निस्वार्थ प्रेम केवल दो ही करते हैं, एक कटु सत्य है, ये हो सकता है। आप कहेंगे माता पिता का प्रेम, माँ बच्चे का प्रेम होता है, जरूर निस्वार्थ होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। किसी का स्वार्थ 5% है, किसी का स्वार्थ 80% है, वो अलग बात है। पूर्ण निस्वार्थ प्रेम ईश्वर कर सकता है, या ईश्वर का अनुभव करके जिसने अपनी पूर्णता का अनुभव कर लिया है वो कर सकता है। तीसरा दुनिया में कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है, ये तुलसीदास जी ने भी लिखा, यहां भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। और इसकी एक पहचान है, हमारे गुरु जी कहते थे जिसको आप मानते हो कि हमसे बहुत प्रेम करता है उसकी एक ही पहचान है, विचार करो या उससे पूछ लो या अपने से विचार कर लो, पता लग ही जाता है जो साथ में रहता है। अपने मन की 100% बात वो आपको अगर बता देता है निश्चल होके, और वो अपने सुख में सुखी नहीं होता आपके सुख में सुखी होता है, तो वो सच्चा प्रेमी, वही सच्चा प्रेमी। अब आप इसको नोट कर लेना, और जो लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं वहां जरा इसको अप्लाई करना, वो प्रेम है या कामना है, दो ही करते। तो और बोले जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, तीसरा प्रश्न था। भगवान कृष्ण कहते हैं वो चार तरह के लोग होते हैं, आत्मा रामाह ह्याप्त कामाह अकृतज्ञाह गुरुद्रोहा। उसमें चार तरह के लोग हैं, आत्मा राम, आत्मा राम का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनि एव रमते, अपने आत्मा में ही जो रमण करता है उसका नाम है आत्मा राम। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की दृष्टि में दूसरा होता ही नहीं, द्वैत होता ही नहीं, प्रेम कहाँ करे किससे करे, प्रेम दो में होता है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की दृष्टि में प्रेम या द्वेष का प्रश्न खत्म हो जाता है। आत्म रूप से सबको देखता है। और आप तक इतना प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ है कि उसको अपने और पराये का पता ही नहीं लगता है, वो भी किसी से प्रेम नहीं कर पाता, भूल जाता है, उसको भान ही नहीं रहता कौन आया कौन गया। तो ये दोनों क्षम्य है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए। बोले फिर अगर वे दोनों स्थिति नहीं है और प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करता, तो बोले फिर अकृतज्ञ माने ना समझ, बेवकूफ है, उसको पता नहीं लगता कि उससे कौन प्रेम करता। प्रेम का अर्थ, लेकिन प्रेम रखना, ध्यान रखना, व्यवहार नहीं, निस्वार्थ प्रेम। और बोले अगर ना समझ नहीं है फिर भी नहीं करता, तो बोले फिर अपराधी है। ललिता ने विशाखा से पूछा, श्री कृष्ण इन चारों में से क्या है? आत्मा राम है, आप्तकाम है, अकृतज्ञ है, या गुरुद्रोही है? आप कल्पना कर सकते हैं गोपियों, एक अक्षर जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा है, जो श्री कृष्ण को अपनी अदालत में निर्णय दे रही है, ये क्या है? ललिता ने पूछा। ललिता सखी के अवतारी तो हरिदास जी है ना, जिन्होंने बांके बिहारी को अपने प्रेम से प्रकट किया है। ललिता पूछ रहे विशाखा से, ये कौन है? आत्मा राम है। विशाखा बोलती, आत्मा राम तो नहीं हो सकते, व्याख्या सुनना। क्यों? बोले आत्मा राम माने जो अपने में रमण करे, ये तो गोपियों से छेड़छाड़ करते, ये आत्माराम कैसे हो सकते? आत्माराम नहीं। आप तो काम है माने पूर्ण काम है। बोले पूर्ण काम भी नहीं हो सकते, क्योंकि माखन की चोरी करते, पूर्ण काम होते तो माखन की चोरी क्यों करते, ये पूर्ण काम भी नहीं। फिर ना समझ है। विशाखा ने कहा ना समझ कैसे? इन्होंने बांसुरी बुझा के बुलाया, कात्यायनी उपासना में इन्होंने वरदान दिया महाराज के लिए, फिर तीसरी बार बांसुरी बजाया, तो ये ना समझ भी नहीं है। इनको मालूम है कि हमारा जीवन इन्होंने लिया है, हमारा जीवन इन्होंने छीना, चित्त छीना, इन्होंने जानबूझ के छीना। बोले फिर, बोले इसके बाद तो चौथा लक्षण ही घटेगा, ये महान अपराधी, महान अपराधी। गोपियों ने सिद्ध कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं ठहरो, तुम श्रोता हो, मैं वक्ता हूं, मेरे को व्यासासन पे बैठा ला, निर्णय आप लोग कर रहे हो कि मैं अपराधी हूं। आपके प्रश्न का जवाब मैंने दिया है, तुमने जो तीन प्रश्न पूछे थे, प्रेम करने पर प्रेम करना, प्रेम न करने पर भी प्रेम करना, और प्रेम करने पर भी न प्रेम करना, इन तीनों प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। गोपियों, तुम अगर ये पूछती कि मैं क्यों छिप गया था, तो मैं इसका जवाब देता, आपने ये तो नहीं मेरे से पूछा। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, किशोरी, ये सब सावधान हो गई। अच्छा ठीक है, हमारे पूछने में गलती हो गई, हम पढ़ी लिखी नहीं है, अब बता दीजिए कि आप क्यों छिप गए थे। सीधे पूछ दिया, आप क्यों छिप गए थे, आपके छिपने का उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण के आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। गोपियों, सच बताऊं, तुम्हारे निश्चल प्रेम का बदला मैं देवताओं की आयु लेकर के भी तुम्हारी सेवा करता रहूं, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम से कभी ऊर्ण नहीं हो सकता। ये कृष्ण का जवाब है, ये भागवत में कृष्ण का जवाब है। इसके बाद अगर कोई शंका करता है तो क्या कहा जाए? श्री कृष्ण जिन गोपियों के विषय में ये वक्तव्य दे रहे हैं, और ये कोई मेरी भावना नहीं है, ये कोई किसी संत की टीका नहीं है, भागवत का श्लोक है, यत्ते सुजात चरणाम वरुहम स्तनेषु, उनका स्वयं का है। न पारये हम निरवद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संभ्रश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इंद्र की आयु लेकर के भी तुम्हारी जीवन भर सेवा करूं गोपियों, तो तुम्हारे निश्चल प्रेम से मैं कभी ऊर्ण नहीं हो सकता। तो प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला ना, आप अंतर्धान क्यों हुए थे? ये तो हम मान गए कि आप बड़े कृतज्ञ हैं और आप ऋण तो स्वीकार, आप अंतर्ध्यान क्यों हुए थे? श्री कृष्ण कहते हैं सच बताओ गोपियों, अगर मैं नहीं छिपा होता तो दुनिया के लोगों के लिए ये गोपी गीत रूपी मक्खन जो तुम्हारे हृदय में मेरा कृष्ण प्रेम छिपा हुआ था, वो संसार में प्रकट नहीं होता। इसके प्रकट करने के लिए मैंने छिपाव किया था, दुराव किया था, जिससे ये तुम्हारा हृदय प्रकट हो। गोपी गीत दुनिया में आ जाए, अगर मैं नहीं छिपता तो ये गोपी गीत तुम्हारे श्रीमुख से नहीं निकलता, लोगों को पता नहीं लगता कि गोपियों का जीवन क्या था, गोपियों का चिंतन क्या था, गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा क्या थी। तुम्हारे प्रेम को दुनिया में प्रकट करने के लिए मैंने ये अपराध किया है गोपियों, तुम्हारे साथ में अपराध किया हूं, तुमसे मैं ऊर्ण नहीं हो सकता हूं। जहां ये बात कहा, गोपियों का जो प्रणय कोप था शांत हो गया, गोपियां बिल्कुल प्रेमावेश में आ गए, श्री कृष्ण तुम हमारे अपराधी, ये हम बातें स्वीकार नहीं कर सकते। तुम हमारे ऋणी, जो हमारे आराध्य वो हमारा ऋणी रहे, जो हमारा सर्वस्व हमारा अपराधी रहे, ये बात हम हृदय में स्वीकार नहीं कर सकते। क्या कोई उपाय नहीं है तुम्हारे उऋण होने का? हम तुमको उऋण करना चाहते हैं, निरपराध सिद्ध करना चाहते हैं श्री कृष्ण, कोई उपाय तो होगा। श्री कृष्ण ने जो यहाँ शब्द कहे, श्री कृष्ण कहते हैं, उदाहरण दिया, प्रतियातु साधुना गोपियों, किसी ने अगर कर्ज ले लिया किसी नगर सेठ से और वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है तो ऋणी हो जाता है। उसको ऋण करने का एक ही उपाय है कि नगर सेठ उसको अपनी खुशी से माफ कर दे कि तुम्हारा कर्ज मैंने माफ किया। गोपियों, तुम्हारी अदालत में मेरे ऋण होने का एक ही उपाय है, तुम हृदय से कह दो श्री कृष्ण तुमको हमने माफ किया। श्री कृष्ण जिनके लिए बात कहते हैं, श्री कृष्ण का भाव जिन गोपियों के प्रति ऐसा है, जो ठाकुर गोपियों से माफी मांग के ऋण होना चाहता है, उन गोपियों के विषय में कौन विचार करेगा? जब तक कृष्ण प्रेम के रास्ते में कोई नहीं आएगा, गोपियों के चरणों की धूली प्राप्त नहीं करेगा, संतों के चरणों में नहीं बैठेगा, कौन इस रहस्य को समझ सकता है? जिन श्री कृष्ण को लेके आप शंका करते हैं, वो श्री कृष्ण जिनसे माफी मांगते हैं ऋण होने के लिए, अपने को ऋण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, गोपियां गदगद हो जाती हैं, श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाती हैं। श्री कृष्ण एक बार नहीं, हम 10 बार अपने हृदय से कहती हैं, हम आपको अपना ऋणी नहीं रखना चाहती हैं, ऋण करती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, गोपियां प्रसन्न हो गईं और जमुना पुलिन पर महाराज का उपक्रम करते हैं। महाराज वैसे भी 5 अध्यायों में, लास्ट के अध्याय में ही महाराज है। कोई मेरे से एक दिन पूछ रहा था, आप रासलीला पर बोल रहे हैं लेकिन रासलीला तो हो ही नहीं रही। मैंने कहा भाई 5 अध्याय आप भागवत उठा के देख लो, 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय में 4 अध्याय में रासलीला है ही नहीं, 1 अध्याय अंतिम अध्याय में रासलीला है, वो भी पूरे अध्याय में नहीं, आधे अध्याय में। जानते हो क्यों? सुखदेव जी ने आधे अध्याय में रासलीला का वर्णन किया तब तो ये हाल है समाज का, अगर कहीं पूरी रासलीला का वर्णन करते तो वो जानते थे ये आगे के लोग अधिकारी नहीं होंगे। हाँ, रासलीला का कल वर्णन होगा, लेकिन कल आप सुनेंगे रासलीला को सुखदेव जी ने पूरा वर्णन नहीं किया, बीच में रोक दिया। हाँ, अधिकारी नहीं थे लोग सुनने के। संत लोग जब तक उस भाव में किसी का प्रवेश ना हो, इन लीलाओं का वर्णन नहीं करते, स्वयं आनंद लेते हैं। तो आज इतना ही, कल रासलीला की चर्चा होगी। बोले राश विहारी भगवान की, थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद ही